الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، میں نے جب اس نشست کے انعقاد کا اعلان کیا تھا تو اس وقت ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ اسلام کے ایک سطح تک علمی مطالعے کی نشست ہے. چنانچہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جو دین سیکھنے سکھانے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ میرے ہفتہ وار درس میں آتے ہی ہیں، لیکن ان میں سے جن کی علمی سطح پر دین کو سیکھنے سے دلچسپی ہو اس میں وہی شاید کچھ استفادہ کر سکیں گے. میں نے یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ اس سطح کو قائم رکھنا ناگزیر ہوگا، چنانچہ اس میں یہ شکایت آپ میں سے کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ اس سطح کو تبدیل کر کے کچھ اسے عام فہم بنایا جائے. ایسا کوئی تقاضا پیش نظر ہو تو اس کے لیے پھر جمعے کی نشست حاضر ہے، اس میں آپ لوگ آتے ہی ہیں، سیکھتے ہی ہیں، ملتے ہی ہیں. یہاں بحث و نظر کی ایک خاص سطح کو قائم رکھنا میرے پیش نظر بھی ہے اور وہ شاید اس کے لیے ناگزیر بھی ہے. پہلے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کتاب جو میں پڑھانا شروع کر رہا ہوں اس کی شان نزول کیا ہے، اسی کتاب کا میں نے کیوں انتخاب کیا ہے اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی نوعیت اصل میں کیا ہے. اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کا دین فی الواقع ہے کیا، اس کو جاننے کے اصول کیا ہیں، اس میں کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ انسان سے کیا مطالبات کرتا ہے، اس میں اگر کوئی اس کے مشمولات کے کانٹینٹس کے اجزاء ہیں تو ان کی کیا تفصیل ہے. ہم اسے اپنی عمومی زندگی میں مختلف طریقوں سے جانتے رہتے ہیں اور جو کچھ بھی ہمارا علم اور ہماری معلومات ہوتی ہیں ان سے متعلق سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اہل علم سے ہم رجوع بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو سیکھتے اور سمجھتے بھی رہتے ہیں. آپ میں سے ہر شخص کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. میں نے جب دین کا علمی طریقے سے مطالعہ کرنا شروع کیا تو بعض چیزیں تو ایسی تھیں جو میرے اپنے ذہنی یا علمی پس منظر میں پہلے سے موجود تھی اور بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو معاصر فکر، کنٹمپریری فکر سے بہت نمایاں ہو کر سامنے آ رہی تھیں اور ان کی بنیاد پر بہت سے سنجیدہ سوالات پیدا ہو رہے تھے. یہ دونوں چیزیں مل کر آمادہ غور و فکر کرتی رہیں اور زندگی کے مختلف مراحل میں، جس کی کوئی تاریخ یہاں سنانا پیش نظر نہیں ہے، میرے سامنے بھی وہ صورتحال رہی کہ تراشیدم پرستیدم شکستم، بت بنائے، ان کی پرستش کی، پھر ان کو توڑ دیا. زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ سن 82 کی بات ہے کہ جب میں کم و بیش اپنے پہلے بنے ہوئے تصورات میں بہت سی چیزوں کے بارے میں متردد ہو چکا تھا، بہت سے نئے سوالات سامنے آ چکے تھے، وہ حقائق جن کو حقائق سمجھا جا رہا تھا ان کے بارے میں بھی بہت سے ترددات ذہن میں نشو نما پا رہے تھے. یہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں مجھے اپنے جلیل القدر استاذ مولانا امین احسن اصلاحی کے فکر اور دین پر غور کرنے کے طریقے کو بھی سمجھنے کا بہت حد تک موقع مل چکا تھا، لیکن بحثیت مجموعی دین کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس میں جس طرح کے میں نے عرض کیا بہت سی چیزیں موجود تھیں. मैंने जब दीन के बाद इल्मी मबाइस पर गौर करना शुरू किया है तो मुझको याद पड़ता है कि सबसे पहला जो मेरी जिंदगी में गैर मामूली वाकया पेश आया वो इस्लाम के कानून मीरास से मुतल्लिक है। यानी बाकी चीजें तो जेर बहस रहती थी और उनके बारे में कुछ गौर फिक्र भी होता रहता था। ये 1974-75 की बात है। सबसे पहला मरहला ये था। उस वक्त कोई उसूल का मसला नहीं था, ये मामला भी नहीं था कि कुरान मजीद अपनी बात कैसे बयान करता है, ये मामला भी नहीं था कि उसमें कोई जुबान के बयान के ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से इस मसले पर गौर करना चाहिए। वो मसला नताइज से सामने आया था और ये बहुत बाद में, जैसे कि मैं आगे चल के अर्ज करूंगा, जहनी तरबियत हुई कि नताइज से बाला तर होकर कैसे गौर किया जाता है, लेकिन उस वक्त की जहनी कैफियत यही थी। कुछ नताइज थे और उन नताइज का चूंकि हिसाबों किताब से ताल्लुक था तो वो मेरी गिरफ्त में नहीं आते थे। मेरे अजीज दोस्त अफजाल साहब यहां मौजूद हैं तो इन्होंने उस जमाने में, इनको हिसाब किताब बहुत दिलचस्पी रही है हमेशा से, तो इन्होंने बहुत से मीरास के सवालात इधर से उधर से हल करके और कुछ उसकी पेचीदगियां मुझ पर वाजे करके मेरी बड़ी मदद की कि मैं उस असल मसले को समझ सकूं। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे नताइज थे जो मेरे सामने आ गए और मैंने उनकी बुनियाद पर एक तफसीली तहरीर लिखी, पहले अरबी जुबान में और फिर बाद में उर्दू जुबान में, और उसमें अपने नताइज फिक्र बयान किए। ये इस लिहाज से तो मेरी अपनी इल्मी जिंदगी का एक बड़ा ब्रेक थ्रू था कि पहली मर्तबा जो पहले से बनी हुई चीजें हैं उनमें से बाज चीजों की गलती वाजे हुई मुझ पर। लेकिन मैं जिस जानब तवज्जो दिलाना चाहता हूं ये है कि दीन पर गौर करने के फिक्र में जो पुख्तगी बाद में आई और जिसमें बहुत सी चीजों को एक खास जाविये से देखने का जौक पैदा हुआ, ये उस जमाने में अभी नहीं था। चुनाचे मुझे जहां तक याद पड़ता है 1979 में गालिबन पहली मरतबा इशराक निकला है तो उसमें वो तफसीली मजमून मौजूद है जो मैंने मीरास पर लिखा था। बाद में उसमें क्या क्या तगयरात हुए, किन किन चीजों को मैंने दोबारा समझा, उसकी भी तारीख एक लिहाज से महफूज हो गई है क्योंकि फिर वो कानून मईशत के हिस्से के तौर पर छपा और अब इस किताब में भी कानून मईशत ही के एक जुज्व की हैसियत से मौजूद है। तो जो शख्स भी उसका तकाबली मुताला करेगा तो ये जान लेगा कि उसमें किन किन जावियों से तब्दीली या तगयर पैदा हुआ है सोचने के अंदाज में। मैं ये जिक्र कर रहा था कि ये 1982 की बात है जब मुझे कुछ ख्याल हो रहा था कि अब दीन के सारे कंटेंट पर तफसील से काम करना चाहिए, कोई उसकी अभी वाज़ह तस्वीर सामने नहीं थी। अब जब भी आप दीन के कंटेंट पर काम करने का इरादा करेंगे तो जाहिर है कि पहले ईमानियात और अखलाकियात के मबाइस आएंगे, उसके बाद कानून और शरीयत के मबाइस आने चाहिए। मेरे यहां भी जाहिर है कि यही तरतीब होती और बिलखसूस इसलिए यह तरतीब यकीन होती। मेरा अपना पस मंजर फलसफे और अदब का है और मुझे उस जमाने में कोई फिका के मबाइस से ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी और ना ये ख्याल था कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगरचे मीरास के कानून पर काम करने से कुछ चीजें वाजे हो गई थी लेकिन तरतीब पर यह असरअंदाज नहीं हुई। 1982 में वो वाकया हुआ कि जिसमें हमारी वफाकी शरई अदालत ने रजम के मामले में एक फैसला दिया और उस फैसले में मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहिब की तदब्बुर कुरान के मुतल्लका हिस्से बयान ही नकल कर दिए और एक लिहाज से गोया ये बताया कि हमारे फैसले की बुनियाद इसी तहकीक पर है। ये फैसला पाकिस्तान टाइम्स में शाये हुआ तो इसके खिलाफ मुल्क में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उलमा ने इस पर किताबें लिखी, बहुत सी तनकीदात शाये हुई, बहुत से लोगों ने उस पर हुकूमत से एहतजाज किया, यहां तक कि वफाकी शरई अदालत पूरी की पूरी तोड़ दी गई और उसके बाद उसमें उलमा की शमूलियत का फैसला किया गया। जब यह हादसा हुआ तो उस जमाने में जो तनकीदें की जा रही थी, मैंने ये महसूस किया, उस वक्त उस्ताद इमाम अभी जिंदा थे, कि वो एक बेबसी की कैफियत महसूस कर रहे हैं। उनके हाथ में उस वक्त राशा आ चुका था, उम्र के उस हिस्से में इस तरह की किसी बहस मुबाहसे में उलझना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो मुझे ख्याल हुआ कि गालिबन इसमें मुझे कुछ देखना चाहिए। मैं बिल्कुल इत्मीनान के साथ ये बात कह सकता हूं कि उस वक्त तक अभी उनकी राय का मैंने इल्मी मुताला नहीं किया था। यानी एक है कि आपके सामने राय मौजूद है, आप जानते हैं कि ये ठीक है या गलत है, या कुछ थोड़ा बहुत आपको वो अच्छी भी लगती है, मुतासर भी करती है, लेकिन मैंने उसका इल्मी मुताला उस वक्त तक नहीं किया था। और मुझे, मैं जैसे कि अर्ज किया, दिलचस्पी भी बहुत कम थी फिका और शरीयत के इस तरह के मबाइस के साथ। चुनाचे इस ख्याल से कि अब अगर इनकी राय दुरुस्त है तो इसके दिफा की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है, और अगर गलत है तो बहरहाल मुझे भी उसी तरह धारे बरात करना चाहिए इस तरह जिस तरह दूसरे लोगों ने किया है। मैंने इसका मुताला शुरू किया। जैसे ही मैंने उसका मुताला शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये जो बहस है ये तो महज फिका की बहस नहीं है, बल्कि इस बहस के पस मंजर में बहुत से दूसरे उलूम हैं जो जेर बहस आ गए हैं। यानी हमारे यहां उसूल फिका की बात नाजुक चीजें हैं जो उसमें जेर बहस आ गई हैं। इसी तरह से कुरान मजीद के फहम के बाज मसाइल हैं जो उसमें जेर बहस आ गए हैं। यानी बहस एक जुज्म में नहीं है बल्कि वो बहुत से कुलियात पर खड़ी हुई है। ये मुझको एहसास हुआ, चुनाचे मैंने सब काम छोड़ दिया। उस वक्त मैं वापिस आ चुका था मुरीदके से और अपने पुराने घर में सुल्तानपुरे में मुकीम था, तो मैंने सारे काम छोड़कर इन चीजों का मुताला शुरू कर दिया। 82 वो साल है कि जिसमें मैंने उसूल फिका की चीजें, इससे पहले भी पढ़ी थी तालिब इल्माना जमाने में, लेकिन जिस तरह पढ़ना चाहिए वैसे उनको पढ़ना शुरू किया। और इसी तरीके से खुद जो मसला जेरे बहस था उसके बारे में भी जो कुछ सलफ कलफ में लिखा गया था उस पर एक नजर डाली। ये सारे मुताले के नतीजे में इस पर मुझे शरे सदर हो गया कि चंद जुजवी चीजों के सिवा उस्ताज इमाम की राय बिल्कुल ठीक है, यानी उस राय में कोई गलती नहीं है, उसूल पर मबनी है, उससे मसला हल हुआ है। और न सिर्फ ये कि हल हुआ है बल्कि बहुत से और दूसरे मसाइल हल होने की क्लीप भी मिल गई है, ये वाजे हो गया। अलबत्ता बाज जुजवी चीजों में या बाज इस्तदलाल के मौके में मुझे उनसे उस तरह इत्तेफाक नहीं हो सका। नतीजे के लिहाज से मैं महसूस किया कि राय बिल्कुल ठीक है, उसूल के लिहाज से राय बिल्कुल ठीक है। चुनाचे उस वक्त मैंने जो लोग उस पर तनकीद कर रहे थे उनकी तनकीदों का जवाब लिखा है। ये वही जवाब है जो मेरी किताब बुरहान में अब गालिबन 100-125 सफे के मबाइस में फैले हुए हैं। उसमें नहव के बहुत से मसाइल उठ खड़े हुए, अदब के बहुत से मसाइल उठ खड़े हुए, जुबान और उसके बाद मुतल्लकात के मबाइस उठ खड़े हुए, तावील के बाद नाजुक मसले उठ खड़े हुए, और बहुत जलील कदर अहले इलम जो उस वक्त मौजूद थे उन्होंने उस पर गिरफ्त की थी। तो मैंने उन सारी चीजों का महात्मा किया और फिर उसके बाद वो बहस अल्लाह का शुक्र है कि खास नतीजे तक पहुंच के खत्म हो गई। लेकिन मेरे जहन की सारी तरतीब उसके नतीजे में बिल्कुल धर्म भरम हुई। यानी बजाय इसके कि मैं ईमानियात और अखलाकियात के मबाहस से दीन पर गौर करता या उसके बुनियादी उसूलों को पहले समझकर फिर ये आगे बढ़ता, तरतीब बिल्कुल उलट गई और ज्यादातर फिको शरीयत के मसायल मेरे यहां मौजू बन गए। 82 से लेकर कमोबेश आप यूं समझ लीजिए कि 85-86 तक तो जुजवी लिहाज से यही मसाइल ज्यादातर मेरे एतना का मौजू रहे। उन पर मैंने उस जमाने में काम किया, बहुत सी चीजों पर गौर किया, बहुत सी चीजों के नतायज बाजे हो गए, बहुत सी चीजों के सवालात मुतय्यन हो गए, ये मालूम हो गया कि इसमें किस तरीके से गौर किया जा सकता है, ये कमोबेश उस जमाने में हो गया। लेकिन 86-87 के जमाने में मुझे ज्यादा दिलचस्पी इस जानिब हुई और उसके भी बाद वजूह है जिसकी तारीख सुनाने की जरूरत नहीं है कि इससे पहले कि इन चीजों पर बाकायदा तरीके से लिखकर अपना नुकता नजरबाजे किया जाए ये देखना जरूरी है कि दीन बसीयत मजमूई क्या कॉन्सेप्ट देता है अपने बारे में। चुनाचे ये एक शिफ्ट है मेरी अपनी इल्मी जिंदगी में कि जिसमें मैंने दीन के सही तसव्वुर पर, इसी उनवान से मेरा मजमून इसमें मौजूद है, दीन के सही तसव्वुर पर काम करना शुरू किया। और आप यूं समझिए कमोबेश इसमें मुझे 10 साल लगे। इसके 5-7 वर्जन्स हैं जो चूंकि मुख्तलिफ औकात में छप गए या लोगों के सामने भी आ गए तो उनका भी एक मुताला करके देखा जा सकता है कि इसमें मेरा अपना जहन इर्तका के किन मराहल से गुजरा है। 93-94 में कहीं जाकर मैंने इसको आखिरी सूरत दी है और फिर ये दीन का सही तसव्वुर के उनवान से छपा है। इस किताब में शामिल होने तक इसमें सिर्फ 2 मकामात हैं जिनमें मेरे नुकता नजर में मजीद तहकीक से कुछ तगैयर हुआ और मैंने उसमें तब्दीली की है, वरना वो आखिरी वर्जन ही कमोबेश इस वक्त तक मौजूद है। دین کے صحیح تصور پر کام کرنے کے دوران میں مجھے یہ پہلی مرتبہ خیال ہوا، یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ 90-91 کے زمانے میں میری یہ رائے بننا شروع ہوئی کہ دین پر ایک جامع ٹیکسٹ بک لکھی جانی چاہیے، یعنی ایک ہی کتاب. اس سے پہلے ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہیں اس نوعیت کی، لیکن جو زاویہ میرے پیش نظر تھا اس سے مجھے یہ خیال ہوا کہ ایک کتاب لکھی جانی چاہیے، یعنی ایک ایسی کتاب، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جلد میں ہو، سکتا ہے دو جلدوں میں ہو، لیکن ایک ایسی کتاب جس میں دین اپنے مبدا سے منتہا تک، ابتدا سے انتہا تک پوری جامعیت کے ساتھ بیان ہو جائے. یعنی اگر آپ چاہیں تو ایک کتاب آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور یہ کہہ سکیں کہ اس میں اصول سے لے کر آخر تک پورا دین بیان کر دیا گیا. یہ خیال اس زمانے میں زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. چنانچہ پہلے میرا خیال یہ تھا کہ جن جن چیزوں میں کچھ مشکلات ہیں یا مسائل ہیں ان پر تحقیق کر کے کچھ لکھ دینا چاہیے، لیکن جیسے ہی یہ چیز سامنے آئی تو پھر میں نے اس کتاب کا ایک پورا نقشہ سامنے رکھ کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. میں جو کام کر چکا تھا، یعنی پہلے فقہ و شریعت پر بہت سا کام کر چکا تھا، بعض اس میں جزوی مسائل ایسے تھے جن میں میرا اپنا ایک نقطہ نظر بن گیا تھا، ان میں سے بعض چیزیں میں نے ضرورتاً لکھ بھی دی تھیں اور وہ شائع بھی ہو چکی تھی، تو اس لیے میں نے پھر ترتیب کو تبدیل نہیں کیا. یعنی یہی خیال کیا کہ پہلے شریعت ہی کے مباحث کی تکمیل کر لی جائے. تو اب بھی جب آپ اس کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس میں دین کا صحیح تصور کے سوا باقی تمام مباحث زیادہ تر فقہ و شریعت سے متعلق ہے، اور ایمانیات اور اخلاقیات کا حصہ وہ ابھی لکھنا باقی ہے، یعنی ہونا اس کو ترتیب میں پہلے چاہیے تھا، وہ ابھی لکھنا باقی ہے. اب جب یہ شائع ہو گئی تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو نتیجہ میں نے نکال کے سامنے رکھ دیا ہے اس کا پورا پس منظر اس میں بیان کروں. ظاہر ہے کہ اگر اس طریقے سے اس کتاب کو لکھا جاتا تو یہ شاید 20 جلدوں کی کتاب بنتی. تو اس میں میں نے جو نتیجہ فکر ہے اس کو بیان کر دیا، اور اس کے استدلال کی طرف بھی اس طرح اشارہ کیا ہے کہ ایک علمی مزاج رکھنے والا آدمی تو اس کو سمجھ لے کہ استدلال کی اصل نوعیت کیا، پس منظر کیا ہے، لیکن یہ کہ جس کو نوبائز سے دلچسپی نہیں ہے اس کے سامنے وہ فکری نتیجہ آ جائے اور وہ اس کو دیکھ لے کہ وہ دین کے ایک بنیادی قضیے کو کس طریقے سے حل کرتا ہے. میں یہ طریقہ اختیار کیا. ظاہر ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرنے کے بعد یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ ایک ٹیکسٹ بک کے طریقے پر کتاب پڑھائی جائے. تو اس میں بھی پہلے میرا خیال یہ تھا کہ بہت سے لوگ ہیں میرے شاگردوں میں بھی جو پڑھاتے بھی ہیں، اور ایک پورا انسٹیٹیوٹ وجود میں آ چکا ہے جس میں تعلیم تدریس ہوتی ہے، تو وہ پڑھائیں گے ہی. تاہم شاید میں متعین طور پر تو نہ عرض کر سکوں، لیکن بعض موقع پر میں نے یہ محسوس کیا کہ ایسے نکات ہیں جن کو شاید ابھی دوسرے لوگوں کے لیے اپریشیٹ کرنے میں دقت ہے، یا اس کا پورا پس منظر ان کے سامنے اس طرح واضح نہیں ہے. تو پھر مجھے بار بار یہ خیال ہونا شروع ہوا کہ میں اس کتاب کو ایک مرتبہ خود پڑھا دوں. یعنی یہ میں نے آپ دراز نفسی سے اس لیے کام لیا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے. یہ نشست اصل میں اسی کے لیے منعقد کی گئی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنا وقت لگے گا. میں نے اس کی ایک خاص سطح سامنے رکھی ہے، اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ مخاطبین میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو عربی زبان سے واقف ہیں، اسلامی علوم سے واقف ہیں، اس کے مباحث کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں یہ خبر ہے کہ اس سے پہلے کیا کیا نقطہ نظر رہے ہیں، اس میں آپ کوئی چیز پڑھاتے ہیں. ایک سطح وہ ہے. اس میں اندیشہ یہ تھا کہ اگر مثال کے طور پر اپنے طلبہ کو میں پڑھا سکتا تھا، اندیشہ یہ تھا کہ اس میں وہ چیزیں جن کی توضیح مطلوب ہے وہ نہیں ہوگی، اور یہ خیال کر کے میں اس کو آگے بیان کر دوں گا کہ یہ بات تو واضح ہے. اچھا، پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اس کو اس سطح پر لے آیا جائے کہ جس میں آپ ہر چیز کی گویا ہندی کی چندی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ وہ سطح ہے کہ جس کے اوپر سویرا ہو جاتا ہے شروع کریں. تو میں نے ایک درمیان کی سطح اس کی متعین کر لی ہے، یعنی ایسا طریقہ اختیار کر رہا ہوں کہ جس میں اس کے علمی پس منظر کو بھی بیان کر دوں، مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے وہ بھی واضح کر دیا جائے، میں اس کو کس زاویے سے دیکھتا ہوں اس کو بھی بیان کر دیا جائے، اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ استدلال کی اصل بنیادیں کیا ہیں. لیکن بہت زیادہ فیصلہ لائی جائے جن کو عربی زبان یا اس کے علوم سے واقف لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. تو یہ اس کی سطح رہے گی، لیکن بہرحال یہ سطح بھی ایسی ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو نیند آ جائے، یعنی یہ ممکن ہے. تو ہمت کر کے آپ لوگوں کو اس کو سمجھنا ہوگا. جو طریقہ اس کے لیے میں نے اختیار کرنا چاہا وہ یہ ہے کہ یہ طالب علمانہ نشست ہے، یعنی میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، کوئی لیکچر دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، ایک چیز کی تدریس کر رہا ہوں. تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے دوران میں ایک بات نہیں واضح ہو رہی تو شروع کر دیجیے، آپ گفتگو شروع کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر ہم بحث مباحثہ کر لیں اور اس میں دوسری آراء بھی سامنے آ جائے اور مجھے اس کا محاکمہ کرنے کا موقع مل جائے. آپ اس کے لیے بھی پابند نہیں ہے کہ ایک بات ختم ہو تو تب آپ بات کریں، یعنی درمیان میں روکیے اور گفتگو شروع کر دیجیے. تو اس میں یہی بے تکلفی کا ماحول رہنا چاہیے، یعنی اس کے بغیر شاید بات واضح کرنا مشکل ہوگا. اس کو بھی ملحوظ رکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر آپ درمیان میں روک کر یہ کہیں کہ یہ بات واضح کر دیں. تو میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں واضح کرنے والا ہوں، یا آپ سے یہ کہوں کہ اس کو تھوڑا مؤخر کر دیجئے، میں یہ بات مکمل کر لوں. تو اس کو حوصلہ شکنی سے تعبیر نہ کریں، یعنی یہ اصل میں اس بات کی ضرورت ہوگی. مقصد یہی ہے کہ اس میں ایک پارٹیسپیشن ہو، جیسے کہ طلبہ کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، آپ بھی شرکت کیجیے اور میں بھی. یہ بات بھی واضح کر دوں کہ اگرچہ کم و بیش 25 سال جو کچھ میں نے دین کو سمجھنے غور فکر کرنے بسر کیے ہیں یہ اس کے نتائج ہیں، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے ادنا درجے میں بھی یہ خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی حتمی چیز ہے. یعنی دین کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے بعض چیزوں کی غلطی ہماری تحقیقات سے ہمارا خیال ہے کہ واضح ہو گئی ہے، بعد میں آنے والے ہماری تحقیقات کی غلطیاں واضح کریں گے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک جاری رہے گا. یہ بھی خیال نہ کیجئے کہ کسی غلطی پر متوجہ کرنے یا متنبہ کرنے کے لیے کوئی بڑا غیر معمولی علم چاہیے ہوتا ہے. گلی میں جاتا ہوا ایک آدمی بعض اوقات ایک ایسا سوال اٹھا دیتا ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے بڑے سے بڑے عالم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دیکھیے کتنی معمولی بات تھی جو مجھ پر واضح نہیں ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے، یعنی اس لحاظ سے ایک طالب علم نے جیسے دین کو سمجھا اسی طرح دیکھیے. مجھے بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ میں پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں یا کوئی چیز واضح کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو اس وقت غلطی واضح ہو گئی، یعنی بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو برسوں سوچتے رہتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو غلطی واضح ہوتی ہے. اچھا برسوں بیان کرتے رہتے ہیں، لکھتے ہیں تو غلطی واضح ہوتی ہے. لکھ بھی دیتے ہیں، کسی بحث مباحثے میں دوسرے کے زاویہ نظر کو سنتے ہیں تو غلطی واضح ہوتی ہے. تو یہ عمل بھی میرے نزدیک جاری رہنے کا عمل ہے، یعنی طالب علمانہ زندگی میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ادنا درجے کی بھی کوئی گھبراہٹ ہو. میں نے اگر اس میں بعض اس کے جو ابواب ہیں ان کو آپ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے چار چار پانچ پانچ ورژنز موجود ہیں چھپے ہوئے، تو اس میں بہت سی چیزوں میں تبدیلی کی ہے اور اس میں یہ سارے ہی معاملات ہوئے ہیں. یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں خود متنبہ ہو گیا، ایسا بھی ہوا ہے کہ بیان کرتے وقت کوئی چیز سامنے آ گئی، ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے توجہ دلائی اور واضح ہو گئی، ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنے ہی شاگردوں کے ساتھ بحث و مباحثے میں بعض پہلو واضح ہو گئے. اور یہ تو بارہا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ پر بالکل واضح ہے اور اس کے وضو میں بھی اس کی عبادت میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جن الفاظ میں آپ نے اس کو بیان کیا ہے ان میں ایسی غلطی ہے کہ جس سے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکی. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں وہ طالب علمانہ زندگی میں پیش آتی ہیں. لہذا ہو سکتا ہے کہ اس نشست کے دوران میں بہت سی چیزیں میں آپ سے سیکھوں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں مجھے تنبہ ہو، بہت سی ایسی چیزیں ہوں جن پر مزید تحقیق کی ضرورت محسوس ہو. یہ سارے مراحل بھی اس میں پیش آ سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس سے پہلے میرے ہمیشہ احباب اور شاگردوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے میرے کام میں، ایسا ہی کچھ کردار آپ میں سے بھی ہر شخص ادا کرے گا تاکہ اور چیزوں کو واضح کیا جا سکے. ہم سب دین کے سچے طالب علم ہیں اور اسی طالب علمانہ ذہن کے ساتھ اپنے پروردگار کی ہدایت کو سمجھنا چاہتے ہیں. اس میں کسی تعصب کا کیا سوال، کسی انانیت کا کیا سوال، ایک طالب علم کی طرح ہر چیز کے اندر اتر کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ممکن ہے کہ آپ کی تنقید سے میری بات سمجھ میں نہ آئے، یہ ممکن ہے کہ آپ توجہ دلائیں اور اس وقت مجھ پر واضح نہ ہو، لیکن میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ سے بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ذہن کے اندر وہ کھٹک پیدا ہو جاتی ہے جس پر آدمی بعد میں غور کرتا رہتا ہے اور وہی چیز پھر بتا دیتی ہے کہ جی یہاں الجھن موجود تھی، اب اس کو حل ہونا چاہیے. تو اس کو بھی ایک اچھی خدمت سمجھ کر آپ اس میں انجام دے سکتے ہیں. اس کے مطالعے کے دوران میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے، مجھے بعض ایسی چیزوں کو بھی بیان کرنا پڑے گا کہ جو اس سے ہٹ کر ہوں گی. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بحث میں یا کسی اور مسئلے کی تنقید میں کسی دوسرے نقطہ نظر کی تفصیل کرنی پڑ جائے، اس کے بغیر شاید اس بات کو میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ سمجھنا ممکن نہیں ہوگا. تو اس چیز کو بھی آپ کو گوارا کرنا پڑے گا، یعنی اس کی نوعیت اس طرح ہوگی. کیا چیزیں آپ کو لے کر آنا چاہیے؟ قرآن مجید ہر آدمی کے پاس ہونا چاہیے، اور اب قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے نسخے مل جاتے ہیں، یعنی جن کو اٹھانے میں لانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. ये किताब तो बहरहाल होनी चाहिए जिसको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा दरमियान में अगर कोई ऐसी बहस सामने आ जाएगी कि जिसमें कोई चीज आपके सामने बतौर मतन के होनी चाहिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे डॉक्टर आगा तारिक साहब उसे फराहम कर देंगे। यानी हो सकता है कि उसमें कोई फोटोकॉपी करा के दे दिया जाए या इस तरह की कोई चीज दे दी जाए ताकि वो चीज सामने रहे, उसका एनालिसिस या उसका तज्जिया आसान हो जाए। मैं बहुत अरसे की बात कहूं, बेश 10 साल के बाद पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ हूं। यानी अब मैं अरसा हुआ कि पढ़ाता नहीं रहा, तो इसलिए जाहिर है कि तदरीस करना भूल गया हूं। तो जब आदमी बहुत अरसे के बाद कोई काम करने के लिए खड़ा होता है तो उसमें बड़ी कोताहियां होती हैं, उनको नजरअंदाज कीजिए। मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा और उसमें आप लोगों की मदद शामिल हाल रही तो बेहतरी के अस्बाब भी पैदा हो जाएंगे। देखिए, ये मैं इसका इब्तदाई हिस्सा आपके सामने खोल रहा हूं ताकि पूरी तरह इसका तारुफ हो जाए। इसमें फहरिस्त पर पहले एक नजर डाल लीजिए। यानी जब आप इस किताब को खोलते हैं तो इसके बाद पहले इसकी फहरिस्त आती है। मैं इस फहरिस्त को वाजे करना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे लिखा हुआ उसूल और मबादी। मबादी ये मब्दा की जबा है, यानी किसी चीज के बेस के माने में, जिस पर वो चीज उठी हुई है, जिससे उसकी पदा होती है, जिससे वो शुरू होती है। तो इसमें वो चीजें जेर बहस लाई गई हैं कि जो दीन के लिए उसूल या मबादी यानी बुनियाद की हैसियत रखती हैं। यानी दीन कहां से मिलता है, उसके माखज क्या है, उन माखज की तफसील क्या है, और इसी तरीके से उन माखज तक अप्रोच के क्या तरीके हो सकते हैं, किन चीजों को मलहूज रखना चाहिए, ये इसमें सारी चीजें बयान हुई हैं। उसके बाद आपने देखा कि एक उनवान है अल हिकमा, ये एक बड़ा उनवान है। इस किताब की बड़ी तकसीम यही है, यानी इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। क्यों किया गया है, ये आगे जेरे बहस आएगा। यानी एक अल हिकमा, एक अल किताब। अल हिकमा में जो मबायस होंगे वो तीन है, यहां एक ही लिखा हुआ है, यानी दीन का सही तसव्वुर, उसके बाद ईमानियात और फिर अखलाकियात। उनकी आगे अज्जा में तकसीम जो भी होगी, यानी बुनियादी बात अर्ज कर रहा हूं, दीन का सही तसव्वुर, उसके बाद ईमानियात और अखलाकियात, ये दोनों अभी लिखना बाकी है। उसके बाद अल किताब है, यानी ये इसमें शरीयत और कानून है। इसको अल किताब का नाम क्यों दिया गया है, ये भी आगे जेर बहस आ जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो कानून सियासत है, यानी जिसमें वो चीजें जेर बहस आई हैं जो सियासी जिंदगी की तथहीर के लिए दीन में बयान की गई हैं। फिर कानून मईशत है, यानी वो कवानीन, वो जवाबित जो मईशत की तथहीर, मईशत के तस्किए के लिए बयान हुए हैं। कानून दावत है, यानी दावत तबलीग, इसके लिए क्या कवायद है, क्या जवाबित है, किन चीजों को दीन ने लाजिम किया है और किन चीजों की तरगीब दिलाई है, वो इसमें जेर बहस आई है। फिर कानून जिहाद है, इसकी शरा की जरूरत नहीं है, यहां जिहाद से बतौर खास किताल मुराद है, यानी जंग के लिए दीन में क्या कानून बयान किया गया है। हुदूद ताजीरात है, यानी जराइम की सजाएं। हुदूद हमारी खास दीनी इस्तलाह है और ताजीर का लफ्ज तो सजा के लिए आम इस्तेमाल होता है, इसमें यह चीज जेर बहस आई है। फिर उसके बाद खुर और नोश है, जिसको बेलगुम लोग खुर्द नोश कहते हैं, यानी ये उसका तालिबे में आप तोज्जो दिलाने में कोई हरज नहीं है, उसका सही लफ्ज नहीं है, खुर्दोनोश, खुर्दोनोश होना चाहिए इसको। खाना पीना, खुर खाना, नोश पीना, तो खुर्दोनोश खाना पीना। यानी खाने पीने के बारे में जैसे सुनते हैं ना कि फला फला चीजें ममनू है, फला फला चीजें हराम है, तो इसमें उसका जिक्र है। फिर रसूम व आदाब है, हम ईद मनाते हैं, मूछों को बेहतर करके रखते हैं, ऐसी चीजें होती है ना, जेर बहस ला, दाएं हाथ से खाते हैं, तो रसूम आदाब भी दीन में चूंके हैं, तो वो इस बाब में बड़ी तफसील से बयान हुए हैं। फिर कसम और कफारा कसम है, यानी कुरान मजीद में कसम को भी एक बड़ी गैर मामूली अहमियत दी गई है और उसके लिए कानून बयान किया गया है कि अगर कोई आदमी कसम खा बैठता है तो उसकी क्या अहमियत है और अगर उसको तोड़ना पड़ता है तो उसका क्या कफारा है। तो ये चीज भी चूंकि कानून और शरीयत से मुतल्लिक है इसमें जरा बहस आई है। दो बाब इसमें अभी तक नहीं लिखे गए, एक कानून माशरत और वो पहले आएंगे, यानी कानून सियासत से ऊपर होंगे, कानून माशरत और कानून इबादात। इबादात से शुरू होगा, फिर माशरत, फिर उसके बाद कानून सियासत और इसी तरीके से आ जाएगा। कानून माशरत मैं इन दिनों लिख रहा हूं, उसकी चार पांच अकसात इशराक में शाये हो चुकी है और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह और चंद महीनों तक वो पाए तकवील को पहुंच जाएगा। उसके बाद मैं कानून इबादात लिखूंगा। अगरचे इबादात के बारे में जो कुछ मेरी तहकीकात है वो हुस्ने इत्तेफाक से इन दिनों जो अबवाब हदीस के यहां जेर बहस रहे हैं उसमें बहुत कुछ सामने आ चुकी है, वो ज्यादातर इबादात के बाब है। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज किया है कि खुद लिखते वक्त बहुत सी दूसरी हकीकतें वाजिब हो जाती हैं, तो वो इंशाल्लाह उसमें जेर बहस आ जाएंगी। ये एक नजर मैंने आपको बताया कि फहरिस्त इसकी है। ये चारों जो दूसरे अबवाब हैं यानी ईमानियात, अखलाकियात, इबादात और कानून माशरत, अगर अल्लाह ताला मोहलत देता है और ये लिखने में कामयाबी हो जाती है तो फिर ये किताब पाए तकमील को पहुंच जाएगी। यानी फिर मैं इसके बारे में ये कह सकता हूं कि पूरे दीन को जैसे मैंने समझा है ये किताब उसे बयान कर देती है। लेकिन इससे पहले ये एक नामुकम्मल किताब है और जैसे ये पाए तकमील को पहुंचेगी और जिंदगी रही और आप लोगों का हौसला भी बाकी रहा तो वो अब्बाब भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। इसके बारे में ये बात मैंने लिख दी। ये किताब अभी नातमाम है, इसके हिस्सा अव्वल में ईमानियात और अखलाकियात और हिस्सा दोम में कानून इबादात और कानून माशरत के अबवाब लिखना बाकी है। पाया तकमील को पहुंचने के बाद ये इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन शामिल इशात होते रहेंगे। ये इस पर मैंने लिख दिया। आप फरमाएंगे सब बातें क्यों बता रहे हो, आम तजुर्बा यह है कि लोग किताब शुरू कर देते हैं, शुरू में जो भी लिखा होता है नहीं पढ़ते, तो मैंने कहा पढ़ लें। अच्छा, इसका जो मैंने दिबाचा लिखा है अगरचे वो एक मुख्तसर सी तहरीर है लेकिन उसको भी देख लीजिए, उसमें मेरा जो नुक्ता नजर है इस किताब को लिखने में वो बयान हो गया है। अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, कमोबेश रुबा सदी के मुताला और तहकीक से मैंने इस दीन को जो कुछ समझा है वो अपनी इस किताब में बयान कर दिया। यानी इस एक जुमले में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मुझे ये इद्दया नहीं है कि यही हकीकी दीन है, मुझे ये इद्दया भी नहीं है कि ये वो कुछ है जिसको सब मानते हैं। मैंने एक तालिब इल्म के तौर पर जो कुछ समझा है उसको मैंने बयान कर दिया। ये वजह है कि इसके अंग्रेजी तर्जुमे के बारे में जब मुझसे शहजाद सलीम साहब ने पूछा तो मैंने कहा कि इसका नाम आप इस्लाम एज आई अंडरस्टैंड इट रख दीजिए। मैंने दीन को जैसे समझा है एक तालिब इल्म की हैसियत से मैंने उसे बयान कर दिया। दिवाचे का बाकी हिस्सा भी मैं तयमुनन पढ़ देता हूं। इसकी हर मोहकम बात को परवरदिगार की इनायत और मेरे जलीलुल कदर उस्ताज इमाम अमीन अहसन इस्लाही के फैज तरबियत का नतीजा समझिए। इसमें कोई बात कमजोर नजर आए तो उसे मेरी कोताही इल्म पर महमूल कीजिए। मलकत आशिकी व गंज तरब हर्च दारम जे युमने हिम्मत उस्त। फारसी शेर का तर्जमा करने की जरूरत नहीं, आप सब लोग फारसी जानते हैं बहुत ज्यादा। इसका मतलब यह है कि खा आशिकी का मलका हो या जिंदगी की खुशियों का खजाना, जो कुछ रखता हूं आप ही के हौसले की बरकत से रखता हूं। तो मतलब यह है मलकते आशिकी और गंजे तरफ हर्च दारम जो युमन हिम्मत है उस आपको शेर से दिलचस्पी है, मफहूम से दिलचस्पी है या शेर कहने वाले से दिलचस्पी है? हाफिज का इसमें वक्त की तरतीब इस तरह से रखी है मुंतजमीन ने कि 50 मिनट में पहली क्लास हुआ करेगी, उसके बाद 20 मिनट का वक्फा होगा जिसमें लोग चाय पियेंगे, क्योंकि सब लोगों का ख्याल ये है कि अगर दरमियान में चाय न पी जाए और पूरे 2 घंटे क्लास जारी रहे तो उसमें पहले हिस्से में तो लोग जागते होंगे, दूसरे में होंगे, फिर उनते उनते सो जाएंगे और फिर उसके बाद शायद घर जाने के काबिल भी न रहे। तो बेहतर यह है कि एक दरमियान में वक्फा करके उनको चाय वाय पिला दी जाए। तो 20 मिनट उसमें आप लोग मिल भी सकते हैं और ये तजुर्बे से मालूम हो जाएगा कि 20 ही मिनट का वक्फा होना चाहिए या इसको कुछ कमोबेश भी किया जा सकता है। बहरहाल इस दफा क्योंकि इब्तिदा हो रही है तो उन्होंने यही वक्त रखा है। फिर उसके बाद मजीद 50 मिनट की नशस्त होगी और बैसियत मजमू अगर मैं जमा करने में गलती नहीं कर रहा तो ये 2 घंटे हो जाएंगे। तो वक्त की इब्तिदा के बारे में भी आपके इल्म में होगा कि गुरूब आफ्ताब से 1 घंटा बाद हम इसे शुरू किया करेंगे। आज 6:05:18 पर गुरूब था, तो 6/18 पर हमने इसको शुरू किया है और ये इस लिहाज से इंशाअल्लाह अजीज 8/18 पर खत्म हो जाएगी और यही चीज वक्त की तब्दीली के साथ इसमें जारी रहेगी। अब जाहिर है कि इसमें असल किताब दूसरी निशस्त में शुरू हो जाएगी और उससे पहले ये कुछ तमहीदी चीजें थी जो मैंने आपसे अर्ज की है। मैं ये चाहूंगा कि इसमें आप कोई मशवरा देना चाहते हैं या किसी खास तदरीस या तालीम में कोई और चीज आप कहना चाहते हैं तो ये जो 5-7 मिनट अब बाकी हैं इसमें आप वो कह लीजिए ताकि फिर वक्फा कर लिया जाए और दूसरी ही निशस्त में बाकायदा इल्मी मबाइस की इब्तदा की जाए। तो इसमें थोड़ा सा डायलॉग आप लोगों के साथ हो जाएगा, जो मुश्किलात आप महसूस करें कोई इस मामले में या किसी चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहें तो उसका लिहाज रखा जाए तो मैं उसके लिए हाजिर हूं।
मगरिब के 1 घंटे बाद
इसको
1 घंटे से कुछ कम नहीं किया जा सकता?
ये बड़े तजुर्बात से गुजर कर रखा है हमने दर्स में, तो अब 1 घंटा 10 मिनट बाद शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अपने दफ्तरों से फारिग होकर पहुंचना होता है या अपनी दुकान बंद करके पहुंचना होता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे तालिब इल्म नहीं है तो इस वजह से थोड़ी ताखीर कर लेते हैं इसमें। खास तौर पर सरमा में तो लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत सी जगहों पर 5 बजे में फारिग ही होते हैं, तो ये इसका सबब है। और कोई चीज आप पूछना चाहें? तो ये भी मैं आज कर दूं, इस तरह मैंने पहले कहा था कि एक खास तरीके की ये नशस्त है। मिसाल के तौर पर आदमी महसूस करता है कि भाई मैं इस तरह की सकील बहसों में क्यों शरीक हूं, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। इत्मीनान के साथ खामोशी से आना बंद कर दीजिए और जुमे के दर्स में आते रहिए। अभी मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था कि हमारा अपना सेमिनार हॉल हमारे इंस्टीट्यूट में बन रहा है तो उम्मीद है कि 4-5 नशस्तों में इतने तालिब इल्म रह जाएंगे, फिर वहां भी दिक्कत नहीं होगी।
इस किताब को मुकम्मल करने के लिए अगर हफ्ते में सिर्फ 1 नशस्त होगी तो बहुत तवील दौरा।
कोशिश तो करेंगे कि जल्द हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा के तो शायद लोग मुतम्मिल ना हो सके।
चलिए जब कम रह
जाएंगे शुरू करके देखते हैं। यानी अभी चूंकि मैं भी पहली मरतबा इसको पढ़ा रहा हूं तो मैं नहीं कह सकता कि इसमें कितना वक्त लगेगा। कोशिश तो यही होगी कि कुछ लातायल बहसों से इज्तनाब कर लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा मुतल्लक रहा जाए मामले से। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना जायज नहीं होता क्लास में, कोई बात पूछनी पूछिए कहनी है तो कहिए। पहले क्यों नहीं सुना आपने? आदमी को पहले सुनना चाहिए फिर लिखना चाहिए। आशिकी का मलका हो या तरप तरप कहते हैं खुशी को, मसर्रत को का खजाना हो, जो कुछ रखता हूं हर चेदारम ज युम्न हिम्मत उस्त, उन्हीं के हौसले की बरकत से रखता हूं। युम्न कहते हैं बरकत को और हिम्मत फारसी में हौसले के बानी में इस्तेमाल होता है, ये उर्दू वाली हिम्मत नहीं है।
अल्लाह
तला की तो शायरी को मालूम होगा, मेरा ख्याल है कि उसको तो अल्लाह ताला से कोई खास दिलचस्पी नहीं होगी। हाफिज का अजीब मामला है कि उसको सूफी लोग पढ़ते हैं तो वो उसमें से बादाए इरफान कशीद कर लेते हैं और हमा शुबा पढ़ते हैं तो उसमें से बादाए अंगूर कशीद कर लेते हैं, तो उसमें दोनों ही चीजें हैं। ज्यादा अच्छा है अगर कोई सादा तर्जुमे वाला कुरान आपके पास हो तो उस पर आसानी हो जाएगी। वैसे तो जो आयत ज़ेरे बहस आएगी, क्योंकि उसको ज़ाहिर हम सारी तजिया और तहलील से गुजारेंगे तो ज्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन ये जरूर उसमें रखिए कि उसमें आयात के नंबर हों। और अब तो जो नए नुस्खे कुरान के शाये हुए हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके सूरा का नंबर भी होना चाहिए और आयत का नंबर भी होना चाहिए। यानी आम आदमी को अगर बताया जाए कि सूरह नूर निकालिए तो उसको तो नहीं मालूम कि ये 24 नंबर सूरह है या किस सूरह के बाद आती है, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। तो ऐसा कुरान लीजिए कि जिसमें सूरह का भी नंबर हो और आयत के भी उस पर नंबर पड़े हुए हों, उसमें फिर बहुत आसानी होगी। जब मैं आपको बताऊंगा कि फलां जगह निकाल लीजिए तो उसमें आप सूरह भी निकाल लेंगे और आयत भी निकाल लेंगे। जी आप अलमारत के तालिबे इल्म इसीलिए पूछ रहे हैं। और कोई चीज?
इस
आप देना चाहती है तो ले लेंगे, क्या ख्याल है आप लोगों का? अभी तो मैं होगा और एक दो लोग होंगे यहाँ बैठे हुए,
इम्तिहान होना हो सर्टिफिकेट जरूर देंगे।
मेरा ख्याल ये कि ये एक अच्छी चीज हो सकती है कि जो लोग बाकायदगी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ये ताकि बस पर सवार होने में सहूलत रहे। तो आपका आप दफ्तर से आ जाया करेंगे? कितने बजे छुट्टी होती है? अच्छा, मुझे ये ख्याल था कि आपकी पैकेजेस में तो शायद थोड़ी ताखीर होती है। उसकी मैंने वजह बयान कर दी है, उस सूरत में जाहिर है कि एक बड़ा ही लातायल किताब हो जाती। मैंने अपना नुक्ता नजर बयान
कर दिया,
जिन जगहों पर नागुजीर हुआ है वहां मैंने बयान कर दिया है, लेकिन किसी दूसरे नुक्ता नजर को बयान करने का दयानतदाराना तरीका यह होता है कम से कम आप उसको इतना जरूर बयान करें जिससे उसके बारे में कोई गलत फहमी न पैदा हो जाए।
अंग्रेजी लोगों ने जो स्कूल से पढ़े ना अंग्रेजी देखना आती है ना
उर्दू आती है। मैं इसका एक बड़ा सादा नुस्खा आपको बताता हूँ। आज के लेक्चर में जो मुश्किल लफ्ज बोले हैं उनको नोट कर लीजिए और जैसे ही इस तरह का मौका आए तो उनके मानी पूछना शुरू कर दीजिए। आपको मैं इत्मीनान दिलाता हूं कि चार पांच नशस्तों के बाद आपके लिए कोई लफ्ज मुश्किल नहीं रहेगा। हर मुसन्निफ और हर बोलने वाले के यहां एक महदूद वोकैबुलरी होती है जो उसकी खास वोकैबुलरी है, जखीरा अल्फाज है, उसको आप सीख लीजिए तो आसानी हो जाएगी। क्योंकि खुद बोलने वाले को बाज़ुकात यह अंदाजा नहीं होता कि उसके मुखातबीन इस लफ्ज से नावाकिफ होंगे, तो इसमें आप मदद कीजिए तो उसमें दूसरे लोगों को भी सहूलत हो जाएगी। हो सकता है कि जो बात आपने कह दी है बहुत से बुजुर्ग उसमें शर्म महसूस करते हों, बुजुर्गी को तारीज न समझिए अपनी उम्र पर। मैंने तालिब इल्माना हैसियत से मैं भी 50 साल को पहुंचने वाला हूं, बूढ़े ही हो गए हम सब लोग। और कोई चीज जी? इसी को जैसे किताब है वैसे इंशाल्लाह, अगर इसे पढ़ाने के दौरान में कानून माशरत मुकम्मल हो गया तो इंशाल्लाह फिर उसको पढ़ना शुरू कर दें। जी मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह, यानी ये बताऊंगा कि इसके लिए ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया है और दूसरे अल्फाज क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए, ये जरा बहस आ जाएगा इंशाल्लाह आगे। जी उसूल का भी निजाम का लफ्ज भी इस्तेमाल होता रहा तो ये इंशाल्लाह दीन के सही तसव्वुर में ये चीज पूरी तरह बहस में आ जाएगी। अब इसको हौसला शिकनी से ताबीर न कीजिए, आगे जेरे बहस आने वाली है। और कोई चीज जी?
आप लाए
भाई, बात ये है कि ये है मुफलिसों की क्लास, इसमें बसते भी बाहर, मेरा ख्याल ये है कि दे देंगे लोगों को। तो डॉक्टर साहब अगली दफा एहतमाम कर लीजिए, एक एक झोला होता है ना पुरानी तर्ज का वो तकसीम कर दीजिएगा, ठीक है, जिसमें पेंसिल से डाल के ले आए। लेकिन इस सवाल से ये अंदाजा होता है कि अब आप लोगों का मूड पढ़ने का नहीं रहा, यही अंदाजा देखिए। पढ़ने के लिए तो आदमी को संजीदा होना चाहिए। नहीं भाई शगुफ्ता बुढ़ापे में अब आप कहें कि दो घंटे आदमी संजीदा गुफ्तगू करता रहे तो मुश्किल काम है, आप भी हंसते खेलते रहिए, इसी तरह पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं अडल्ट एजुकेशन बहुत मुश्किल चीज होती है, तो उसके कुछ तकाजे मुझे पूरे करने हैं। और मैंने आपसे कहा कि मैं भी कमो बेश 10 साल के बाद पढ़ाने खड़ा हुआ हूं, इसलिए कुछ मालूम नहीं कि नतीजा क्या निकलेगा। ईमानियात तो जाहिर चीज है, अल्लाह पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, रसूलों पर ईमान है, और उसके बाद जुज़वी चीजें हैं जैसे मलाइका का ईमान, किताबों का ईमान, ये चीजें सब देर बहस आएंगी। फिर ये कि ईमान बैसियत मजमुई जो दीन की हिकमत पर असरात डालता है वो जेर बहस आएगा, फिर जाहिर है उसमें सुनने इलाहिया है और इस तरह की चीजें। लेकिन वो बिल्कुल जब आखिर पे आदमी लिखने बैठता है तब ठीक अंदाजा होता है कि क्या चीज मजीद आनी चाहिए। मैंने कानून माशरत की जो फहरिस्त बनाई हुई थी तो वो 10 उनवानात पर थी मुश्तमिल, लेकिन अब 13 हो चुके हैं लिखने के दौरान ही में। जी उसके अंदर जरिए पैसा जाए।
ये मुख्तलिफ अबवाब की तरतीब में क्या चीजें?
अबवाब की तरतीब से अगर आपकी बरात अल हिकमा का हिस्सा है तो दीन का सही तसव्वुर तो आप भी मानेंगे ना, ये पहले ही होना चाहिए, उसके बाद ईमानियात और फिर अखलाकियात। इसमें तो बहस नहीं है, आगे बहुत बहस हो सकती है। मैंने जाहिर है कि आप कह सकते हैं कि अच्छा जी सियासत से पहले मईशत क्यों नहीं, मईशत से पहले सियासत क्यों नहीं, तो सही तरतीब होगी कि पहले इबादत होगी फिर माशरत होगी फिर सियासत होगी फिर मईशत होगी। इसमें जाहिर है कि कोई दीन ने तरतीब मुकर्रर नहीं की हुई है, तो आदमी ये महसूस करता है कि इन मबाइस का इन्हिसार है जिसमें दूसरी चीजें बाद में जरे बहस आनी चाहिए, तो उसके लिहाज से किताब को तरतीब देने का। जी ऐसा भी हो सकता है, मतलब यह है कि ये भी कोई इल्हामी चीज नहीं है, दो राय हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि दीन के कानून और उसके कंटेंट का मुताला करने से पहले आदमी को जामियत से ये मालूम होना चाहिए कि वो किस दीन का मुताला करने जा रहा है। फिर उसमें बहुत सी इस्तलाहात हैं जो आगे जेर बहस आई हैं और वो वहां एक्सप्लेन हो गई। तो निजाम के लफ्ज पर मैं गुफ्तगू करूंगा बाद में कि ये लफ्ज मैंने क्यों छोड़ दिया है, इंशाल्लाह ये जरे बहस आ जाएगा। जहां मैं महसूस करूंगा कि उस चीज की जुबान के पहलू से कुछ वजाहत की जरूरत है, तो ये ख्याल करके कि मेरे सब मुखातबीन अरबी जुबान से वाकिफ नहीं, उतनी बहस करूंगा, और अगर कोई मजीद उसमें तनकी की जरूरत होगी तो वो आप क्लास में भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। इसका जरूर लिहाज रखिए कि कोई इतनी टेक्निकल बहस ना छेड़ दी जाए कि जिसमें दूसरे लोगों के लिए कोई दिलचस्पी की चीज बाकी न रहे, क्योंकि वो मुझे याद पड़ता है एक जमाने में हमने एक छोटा सा इदारा बनाया और उसके दो हिस्से किए, उसमें एक थी मजलिस इल्मी और एक थी मजलिस अमली। तो जो साहब मजलिस अमली के निगरान थे उनको कुछ जिम्मेदारियां दी गई कि आप मोहल्ले में जो लोग हैं उनमें कुछ दीन की दावत फैलाएं, कुछ अखलाकी तरबियत के लिए कुछ मजारिस का इनेकाद करें, और जो मजलिस इल्मी के लोग थे वो ज्यादातर तालिब इल्माना और इस तरह की सरगर्मी में मसरूफ रहते थे। तो उसमें एक साहब होते थे, मेरे वो क्लास फेलो भी रहे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप तालिब इल्मों को अरबी पढ़ाएं। तो उन्होंने अरबी पढ़ाई शुरू कर दी। लाहौर के एक बड़े आलिम मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब हुआ करते थे, एक जमाने में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के जिम्मेदारों में रहे, उनके साहबजादे थे, और उन्होंने अरबी जुबान अगरचे गवर्नमेंट कॉलेज के तालिब इल्म थे लेकिन पुराने तरीके पर उलमा के तरीके पर पढ़ी हुई थी, तो वो एक खास दिन अरबी पढ़ाते थे। अब मजलिस अमली वालों ने मोहल्ले के लोगों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें मोहल्ले के अंदर जो लोग होते हैं हमारे सुल्तानपुर की बात है, तो उनकी एक मीटिंग बुलाई और उनकी क्लास हुआ करती थी उसी वक्त में, और उनको इतला देना भूल गए कि आज नहीं होगी। वो तशरीफ लाए, उन्होंने आके अरबी की तालीलात पढ़ा रहे थे, उसकी किताब खोली, और मैं इत्तेफाक से कहीं बाहर से आया था और उस मजलिस में मुझे शरीक होना था, और नमाज असर की मेरी रह गई हुई थी और वो मुझे पढ़नी थी, तो मैं नमाज के लिए मैंने नियत बांध ली उसके पीछे ही। वो बैठे और उन्होंने बैठ के कहा कि देखिए बात यह है कि जब जम्मा मा कबल जो है वो मां बाप पे मुंतकिल होता है तो उसके नतीजे में अलिफ जो है वो इस तरह वाव में बदल जाता है, यानी ये एक मिसाल है। तो ये गुफ्तगू शुरू कर दी, और कुछ देर बाद देखा जब लोग घर में गैर मुतल्लक हैं कि हमारे साथ क्या हुई, तो उन्होंने कोई बात नहीं अगली दफा आप किताब लेके आइए, सब बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने नमाज खत्म करके उसको किसी ना किसी रास्ते पर डाला और वो खत्म करा के दूसरी गुफ्तगू शुरू की। तो कम से कम आप तालिबे इल्म लोग इस की एहतियात करें कि जम्मा मा कबल और मां बाप जेर बहस ना आए। क्यों भाई जनाब, मेरा ख्याल यह कि अब वक्फा कर लिया जाए।
चाय के लिए वहां जाना।
باقی کاموں کے لیے کہاں جانا ہو؟